इशिका सिंघानिया मेंशन से बाहर निकल गई थी। बाहर निकलते ही उसके पास आशीष का कॉल आया। आशीष को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने इशिका को वो हाज बताने का सोचा। इशिका ने आशीष के साथ माइंड गेम प्ले करते हुए सच पता लगाने की कोशिश की, लेकिन आशीष बहुत ही शातिर था। वो 1 करोड़ रुपए देने के बाद ही राज बताने वाला था। उसने इशिका को अपनी लोकेशन भेज दी थी। सिंघानिया विला से बाहर निकलकर इशिका रोड पर आगे थोड़ी दूर चलने पर टैक्सी का वेट कर रही थी। उसके दिमाग में वही चल रहा था जो सिंघानिया विला में हुआ था, और इशिका काफ़ी परेशान थी। अचानक उसके सामने अभिमन्यु की गाड़ी आकर रुकी। अभिमन्यु को तो इस वक्त इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए था, फिर उसकी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? इशिका हैरानी से खुद से बोली। अभिमन्यु की गाड़ी अचानक वहाँ देखकर इशिका थोड़ा चौंक गई थी। इशिका आगे जाने के बजाय गाड़ी की तरफ देख रही थी, तभी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला। उसने देखा अभिमन्यु हेडफोन्स लगाए लैपटॉप पर अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। वो फ्रेंच बोल रहा था। उसकी गंभीर आवाज़ इशिका को काफ़ी सुकून देती थी। अचानक उसने कॉन्फ्रेंस बीच में रोकी और इशिका की तरफ देखते हुए उसे अंदर बैठने का इशारा किया। अभिमन्यु ने अपने हेडफोन्स निकालकर लैपटॉप को बंद करके साइड में रख दिया था। उसकी नज़रें इशिका के गाल पर ही थीं जो सूजी हुई थी। अभी भी उसके होठों के किनारे पर हल्का सा खून लगा था जो सूख गया था। इशिका ने अपनी नज़रें नीचे कर ली क्योंकि इस वक्त उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी उसने देखा अभिमन्यु ने गाड़ी के फ्रिज से आइस बैग निकाला और इशिका को देते हुए कहा, पहले इसे लगाओ। इशिका ने अभिमन्यु के हाथ से उसे लिया और धीरे से बोली, लेकिन आप अपनी गाड़ी में आइस बैग लेकर क्यों घूम रहे हो? अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और बेपरवाही से कहा, पृथ्वी थोड़ा लापरवाह है, उसे चोट लगती रहती है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभिमन्यु का जवाब सुनकर पृथ्वी आगे के मिरर से उसे तिरछी निगाहों से देखने लगा। वो हैरान था। पृथ्वी ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, मुझे चोट लगती रहती है, इस बात का पता मुझे क्यों नहीं है? पता नहीं इन्हें सच बोलने में कौन सी शर्म आ रही है। सच उससे पूरी तरह अलग था। इशिका सिंघानिया विला गई थी तब से ही अभिमन्यु बेचैन था। उसने इशिका का पीछा किया जब इशिका से पहले मिट्टल फैमिली वहां से निकली, तब उन्होंने राघव की बातें सुनी। राघव बोल रहा था कि मिस्टर सिंघानिया ने इशिका को थप्पड़ मारा था। सच पता चलते ही अभिमन्यु ने इशिका के बाहर निकलने का इंतजार किया और सुपरमार्केट से उसके लिए आइस बैग और दवाइयां मंगवा ली थी। सब कुछ एक इत्तेफाक लगे ये सोचकर उसने गाड़ी को थोड़ा दूर मेन रोड पर पार्क किया। अभिमन्यु की वजह से पृथ्वी सच नहीं बोल पाया, वहीं इशिका ने भी इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने हाँ में सिर हिलाया और आइस बैग अपने गाल पर रख लिया। इशिका को अब थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। अचानक उसकी नज़र वहां साइड में रखी रिसीट पर गई तो वो समझ गई थी कि अभिमन्यु ने इसे तुरंत खरीदा था। इसका मतलब अभिमन्यु जानता था। इशिका ने बहुत मुश्किल से अपने दिल के दर्द को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके स्वीट जेस्चर को देखकर इशिका का दर्द बाहर आने लगा। इशिका ने अपने मन में कहा, कंट्रोल इशिका, रोना नहीं है। पता नहीं स्कूल में वो बच्चे मुझे बेवकूफ़ क्यों लगते थे जो स्कूल में सज़ा मिलने पर खुद का रोना कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन जैसे ही उनके पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आते थे तो वो उनके गले लगकर रोने लग जाते थे। शायद हमसे हमारा कोई अपना हमारा दर्द पूछता है तो फिर हमारे सारे जज्बात बाहर आ जाते हैं। पहले मुझे समझ नहीं आता था, पर अब सब समझ में आ रहा है। मैंने खुद को बहुत सख्त बनाया था, फिर अब मैं अभिमन्यु के सामने कमज़ोर क्यों हो रही हूँ? रोना नहीं है इशिका, प्लीज़ अभी नहीं, अभिमन्यु के सामने तो बिल्कुल नहीं। आज से पहले इशिका की किसी ने इतनी परवाह नहीं दिखाई थी, इसलिए उसे आदत हो गई थी लोगों के बुरे बर्ताव की। लेकिन अभिमन्यु ने आज इशिका के लिए जो किया उसे देखकर वो खुद के इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इशिका ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली थी। रोना कंट्रोल करने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गईं। इशिका का दिल भारी होने लगा और उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगी जो बचपन से लेकर अब तक उसके साथ हुआ था। आदर्श, मालविका और आयशा का बुरा बर्ताव और वो सब जो उसने इतने सालों में झेला था, अब इशिका से और कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और अभिमन्यु की तरफ देखकर भरी आवाज में कहा, मिस्टर राजवंश, क्या थोड़ी देर के लिए आपका कंधा मुझे उधार मिल सकता है? इशिका की आंखों में आंसू देखकर अभिमन्यु के चेहरे के भाव सर्द होने लगे। उसको देखकर इशिका को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अनजाने में क्या कह दिया। इशिका अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ कहना चाहती थी कि तभी अभिमन्यु ने अपने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बस थोड़ी ही देर मिस सिंघानिया। थैंक्स, इशिका ने धीरे से कहा। अभिमन्यु इशिका के करीब खिसका तो इशिका ने उसके कंधे में अपना सिर टिका लिया। इशिका पहले हल्के हल्के सिसक रही थी, फिर वो बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी। अभिमन्यु को समझ नहीं आया वो क्या बोले, तो वो चुपचाप बिल्कुल सीधे बैठा हुआ था। उसे पता था कि जब दूसरे रोते हैं तो कोई ना कोई उन्हें चुप करवाता है, लेकिन उसके पास कहने को कुछ नहीं था। लगभग 10 मिनट तक खुलकर रोने के बाद इशिका ने अपना सिर अभिमन्यु के कंधे से हटाया तो उसने देखा उसका सूट इशिका के आंसुओं से गीला हो गया था। इशिका को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इशिका उसे सॉरी कहने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने उसे पानी की बॉटल, एक कैप्सूल और ऑइंटमेंट देते हुए कहा, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। इशिका हैरान रह गई। वो इतनी छोटी सी चोट पर उन्हें लेना तो नहीं चाहती थी, पर मना करके अभिमन्यु का दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी।
थैंक यू मिस्टर राजवंश, इशिका ने उन्हें लेते हुए कहा। कोई बात नहीं मिस सिंघानिया, अभिमन्यु ने जवाब दिया। कार में एक बार फिर शांति छा गई। इशिका को रोने के बाद अब काफी हल्का महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में गाड़ी रुकी तो इशिका ने देखा कि पृथ्वी ने गाड़ी हॉस्पिटल के आगे रोकी है। तभी उसे याद आया कि उसे आशीष से मिलने जाना था। अभिमन्यु गाड़ी से उतरता उससे पहले इशिका ने जल्दी से कहा, मुझे कहीं पर जाना है, क्या आप मुझे वहां पर ड्रॉप कर देंगे मिस्टर राजवंश? बोलते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और जल्दी से उसे अभिमन्यु की तरफ कर दिया। उसमें आशीष की भेजी हुई लोकेशन थी। ठीक है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। फिर उसने पृथ्वी को जीपीएस में सेट करने के लिए लोकेशन बताई। इशिका की परेशानी में अभिमन्यु उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो भी उसके साथ आया। लगभग दो घंटे बाद अभिमन्यु इशिका के साथ उसकी भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच चुका था। वो गोवा के बिल्कुल आउटसाइड एरिया में बनी एक पुरानी धर्मशाला थी, जहां कोई गलती से भी आकर नहीं रुकता होगा। इशिका ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और आशीष को टेक्स्ट किया, मैं आपकी बताई हुई जगह पर आ गई हूँ, मुझे बताइए आप कहाँ हैं, बात करते हैं। रूम नंबर 105 में आ जाना, आशीष ने तुरंत जवाब दिया। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा और हल्का मुस्कुरा कर कहा, आज आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच मिस्टर राजवंश, अब आप जा सकते हैं, मैं अपना काम कर लूंगी। अभिमन्यु ने सिर हिला दिया। इशिका वहां से निकली और आशीष की बताई हुई जगह पर जाने लगी, लेकिन अभिमन्यु को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक पुरानी सी धर्मशाला जहां काफी सुनसान एरिया था, वो इशिका को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। अभिमन्यु गाड़ी से बाहर निकला और इशिका के पीछे जाने लगा। इशिका इतनी जल्दी में थी कि उसने पीछे पलट कर तक नहीं देखा। धर्मशाला अंदर से बिल्कुल बंद थी, ऊपर से शाम का वक्त हो रहा था तो वहां काफी अंधेरे जैसा महसूस हो रहा था। वहीं रूम नंबर 105 पर पहुंचकर इशिका ने दरवाजा खटखटाया और थोड़ी तेज आवाज में बोली, आशीष अंकल दरवाजा खोलिए, मैं हूं इशिका, अंदर आ जाओ। आशीष की अंदर से आवाज आई। अंदर जाने से पहले अचानक इशिका की नजर अभिमन्यु पर पड़ी। अभिमन्यु को पकड़े जाने का कोई डर नहीं था, वो बेपरवाही से इशिका के पास आया।
अभिमन्यु ने दबी आवाज में कहा, मिस सिंघानिया, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस अनजान जगह पर क्या कर रही हैं? इस जगह की ठीक से सफाई भी नहीं होती, अगर आपकी वजह से मेरी दादी की तबीयत खराब होगी तो मैं क्या करूंगा? हमेशा की तरह अभिमन्यु ने वसुधा का नाम लेकर इशिका के पीछे आने का बहाना बनाया। इशिका ने गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर राजवंश, मैं आपको सब बता दूंगी पर प्लीज अभी अंदर मत आइएगा, बाहर मेरा वेट कीजिए और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कोई देख ना ले, मेरा इनसे मिलना बहुत जरूरी है। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी और वहीं दरवाजे से थोड़ी दूर खड़ा हो गया। इशिका ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कमरे में ठीक से लाइटिंग अरेंजमेंट भी नहीं था, वहां अंदर काफी अंधेरा था और सीलन की बदबू आ रही थी। इशिका को आशीष पर भरोसा नहीं था, वैसे भी वो एक अच्छा इंसान नहीं था, इसीलिए इशिका अपनी तरफ से पूरी तरह सतर्क थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, एक रोशनदान से हल्की लाइटिंग अंदर आ रही थी। इशिका ने देखा कि एक साया उसके पीछे से आ रहा था। वो आशीष की आवाज थी। उसने इशिका को धमकी देते हुए कहा, इशिका, अगर आज तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो आई स्वेर मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी ये चालाकियां मेरे साथ नहीं चलने वाली हैं। आशीष के इलादे इशिका को ठीक नहीं लग रहे थे, वो जल्दी से दूसरी तरफ पलटी, उसने गहरी सांस ली और अपनी तरफ आ रहे साए को जोरदार किक मारी। तभी वहां एक जोरदार धड़ाम से नीचे गिरने की आवाज आई। इसी के साथ अभिमन्यु जल्दी से दौड़कर अंदर आया। उसने दरवाजा खोला और चिल्लाकर इशिका से पूछा, मिस सिंघानिया सब ठीक है ना? हाँ मिस्टर राजवंश, लग तो यही रहा है, इशिका ने सिर हिलाकर कहा। इशिका के कहते ही पृथ्वी भी अंदर आ गया था। वो अभिमन्यु को अकेले कैसे छोड़ सकता था? उसके हाथ में एक टॉर्च थी, उसने उसे जलाया तो कमरे में रोशनी हो गई थी। कमरे में रोशनी होते ही अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा। अचानक अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। वो जल्दी से इशिका के पास गया, मानो उसे किसी खतरे से बचाना चाहता हो। इशिका समझ नहीं पा रही थी। उसने पलट कर नीचे देखा तो जमीन पर आशीष गिरा हुआ था। उसके सीने में एक स्टील का रॉड घुसा हुआ था। दर्द से वो कांप रहा था और उसका शरीर खून से लहूलुहान था। इशिका बुरी तरह घबरा गई। वो जल्दी से नीचे बैठी और आशीष से बात करने की कोशिश करने लगी। तभी कमरे में किसी लड़की की आवाज आई। वो तेज आवाज में बोला, डैड मैं आ गया हूँ, आपने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? वहां एक लड़का अंदर आया जो उम्र में लगभग 21 साल का लग रहा था। इशिका ने उसकी आवाज से ही उसे पहचान लिया था। वो आशीष का बेटा माहिर था। माहिर इशिका और आयशा से लगभग 1-1.5 साल छोटा था और फिलहाल ओशन यूनिवर्सिटी में ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा था। माहिर को देखते ही इशिका को पुरानी बात याद आ गई। जब उसको ओशन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, उसके फीस के पैसे आशीष ने उससे मांगे थे। इशिका के पास पैसे होते हुए भी उसने इनकार कर दिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी आशीष उन पैसों से गैम्बलिंग करेगा। उस इंसिडेंट के बाद से माहिर के सबके साथ रिश्ते और बिगड़ गए थे। माहिर दरवाजे पर ही था। वो हल्के गुस्से में बोला, डैड क्या आप अपनी गैम्बलिंग की आदत को छोड़ नहीं सकते? आपकी वजह से मुझे अपने क्लासमेट से 20,000 रुपये उधार लेने पड़े, वो सब मेरा मजाक बनाते हैं। प्लीज आप पिछले पैसे वापस कर दीजिए, वरना मैं आपको छोड़कर भाग जाऊंगा, फिर मुझे दोष मत दीजिएगा। अंदर आते ही आशीष की नज़र नीचे की तरफ गई तो वहां आशीष की लाश गिरी हुई थी। उसे देखते ही माहिर ने डर के मारे अपना बैग छोड़ दिया था और बैग से उसके 20,000 रुपये निकलकर बाहर गिर गए थे।
डर से माहिर को सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। वो आशीष के पास गया और उसके नाक के पास अंगुली लगाकर चेक करने लगा कि वो जिंदा है या नहीं। अगले ही पल वो जमीन पर गिर गया और रोते हुए इशिका की तरफ देखकर चिल्लाकर बोला, तुमने मेरे बैट को मार डाला इशिका सिंघानिया, ये क्या कर दिया तुमने? मैं इतनी आसानी से तुम्हें जान नहीं दूंगा। माहिर ने जल्दी से अपना बैग ढूंढा और मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने लगा। उसने कॉल कनेक्ट होते ही कहा, मुझे एक रिपोर्ट फाइल करनी है, मेरे डैड का मर्डर हो गया है और मर्डरर यहीं पर मौजूद है, प्लीज आप मेरी भेजी हुई लोकेशन पर जल्दी से आ जाइए। अभिमन्यु और इशिका समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वहां पर हुआ क्या। इशिका जब कमरे में दाखिल हुई थी तब आशीष बिल्कुल ठीक ठाक था और उससे अच्छी तरह बातें भी कर रहा था। तो क्या सच में इशिका की किक मारने पर एक्सीडेंटली कोई रोड उसके सीने में घुस गई और वो मर गया था?